ओम शांति। इस क्लास की शुरुआत एक छोटे से योग की ड्रिल से करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। छह दिन के बाद बाबा आ रहे हैं, 23 तारीख को शाम को। तो हम इस ड्रिल में अभी से ही एक मधुबन का चक्कर लगाकर आएंगे। एक है शरीर से जाना और दूसरा है मन से। शक्तिशाली कौन सा है? मन से जाना। हो सकता है कि शरीर वहां हो परंतु तन मन घर पर, ऐसा भी होता है। इसके लिए जबकि शरीर से दूर है परंतु मन को वहां ले जाना, मन से अनुभव करके आ जाना। जैसे किसी माता का बेटा यदि विदेश में है और जैसे ही उसका नाम लिया जाता है तुरंत वो सामने आ जाता है, जैसे ही स्मृति वैसे ही स्वरूप बन जाता है, तुरंत आंखों से आंसू आना चालू हो जाएंगे। अभी केवल याद किया है, स्मृति और तुरंत स्वरूप। तो वैसे ही अभी हम सभी एक चक्कर मधुबन का लगाकर आएंगे। तो आने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे हम ही मधुबन निवासी हैं। आज मुरली में बाबा ने कहा है, बाप की नजर है मधुबन निवासियों पर। मधुबन निवासी, मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। प्रश्न भी पूछा है, क्या माया आती है मधुबन में? मधुबन में आते ही हो माया जीत बनने के लिए। तो मन से जाना या शरीर से जाना, दोनों ही आत्मा को माया जीत बना सकता है। तो सभी तैयार है मधुबन के लिए? तो चलते हैं। सभी बैठ जाएंगे जो भी खड़े हैं। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान, चेतना की वह अलौकिक किरण, मैं हूं। भ्रुकुटी के भव्य भाल पर मैं आत्मा, अति सूक्ष्म, अति तेजस्वी हूं। अनुभव कर रहा हूं स्वयं को। मैं एक तपस्वी हूं। इस देह में रहते हैं इस देह के भान से परे स्वस्वरूप में स्थित हूं। पांच तत्वों का बना गया देह एकदम स्थिर हो गया है। इस देह में प्रतिबिंबित मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप धीरे धीरे ये पांच तत्व प्रकृति के पांच तत्वों में समा रहे और बच गई केवल मैं आत्मा। सूक्ष्म देह को धारण कर मैं आत्मा चली ऊपर अपने फरिश्ते स्वरूप में आकाश से भी पार इस संसार से परे पहुंच गई सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने और बाबा की वह शक्तिशाली दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। बाबा के नैनों से पवित्रता की श्वेत रश्मियां निकल मुझ आत्मा में समा रही है। बाबा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। अनुभव कर रहा हूं उसका ये हाथ स्वयं सर्वशक्तिवान अपनी समस्त शक्तियों को मुझे दे रहा है। और बाबा मुझे कह रहे हैं बच्चे जाओ अपने मधुबन घर और अनुभव करो अव्यक्त स्थिति का। मैं फरिश्ता धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूं। अरावली की यह शीतल और मनहर पर्वत श्रृंखला के बीच संपूर्ण निसर्ग सौंदर्य से परिपूर्ण यह मधुबन ऊपर से देख रहा हूं। पांडव भवन का यह आंगन एक शुद्ध संस्कृति का द्वीप इस संसार का आश्रय स्थान। यहां की अव्यक्त धाराएं सकल भूमंडल को पुलकित कर रही है। ऐसा ये अति पावन घर मधुबन मैं फरिश्ता धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूं। पहुंच रहा हूं शांति स्तंभ के पास। यदि शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ पर आ जाना। अव्यक्त महावाक्य कानों में गूंज रहे हैं। शक्तियों की अनंत धाराएं शांति स्तंभ से मुझ में समा रही है। यदि व्यर्थ संकल्प तेज चले तो हिस्ट्री हॉल में आ जाना। इन महावाक्यों को सुनते पा रहा हूं स्वयं को हिस्ट्री हॉल में। सभी पूर्वज आत्माओं के मध्यस्थ बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाना। पहुंच गया हूं उस कमरे में। बाबा की वह आंखें और उससे बहता यह व्यक्त प्रवाह यदि उदास हो जाओ तो रो रिहान करने कुटिया में पहुंच जाना। बैठा हूं वहां पर कैसा आनंद आ रहा। मधुबन का यह आंगन यहां का यह शुद्ध वायुमंडल मैं फरिश्ता स्वयं में धारण करते हुए फिर से आकाश मार्ग से होते हुए धीरे धीरे नीचे आ रहा। अतीन्द्रिय सुख का यह भंडार अलौकिक प्राप्तियों का यह भंडार पवित्रता का यह खजाना चारों ओर बिखेरता मैं फरिश्ता पुनः धीरे धीरे इस पार्थिव देह में प्रवेश करता है। ओम शांति। जाकर आ गए सभी? इस जीवन के अंधकार में रोशनी की जो किरण भगवान ने आकर दी है, इस अंधेरे पथ पर प्रकाश की वह ज्योति जो जगी है, उसकी चर्चा हम करेंगे। यदि किसी एक कमरे में 1000 साल से अंधकार है, किसी एक कमरे में 1000 साल से अंधकार है, उस अंधकार को मिटाना है, कई सारे आक्रमणकारी आए युद्ध करने अंधेरे से, कईयों ने लड़ाई की परंतु आज तक कोई जीत न पाया, अंधकार इतना शक्तिशाली है। बहुत प्रयत्न किया, तलवार और अन्य कई सारे प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से अंधकार पर प्रभाव आघात किया, परंतु अंधकार अब भी बना है, तो क्या किया जाए? कैसे हटाए इस शत्रु को? कैसे उसे धक्का देकर बाहर निकाले? क्या करेंगे? शत्रु बहुत शक्तिशाली है और लंबे समय से है और उससे युद्ध है और उससे युद्ध करते हुए आज तक कितने ही योद्धा और पराक्रमी पुरुष हार गए। हमें भी इस अंधकार को हराना है, तो कैसे हराएंगे? क्या करेंगे? योग बल से अंधकार को, एक कमरे में अंधकार है, हमने कहा एक कमरे में अंधकार है 1000 साल से, कईयों ने लड़ाई की परंतु कोई जीत नहीं पाया, तो क्या करेंगे? दिया लगाना पड़ेगा, प्रकाश को लाना पड़ेगा। अंधकार कुछ है ही नहीं, प्रकाश का अभाव, अनुपस्थिति ही अंधकार है। आत्मज्ञान प्रकाश है, विकार अंधकार है। विकारों से लड़ना एक मार्ग है, परंतु आज तक कितने लोग लड़े और गिर गए और हार गए, कोई जीत ना पाया। कैसे लड़ेंगे इससे? प्रकाश को लाना होगा। जहां प्रकाश है वहां अंधकार आ ही नहीं सकता। एक बार अंधकार भगवान के पास गया और भगवान से कहा कि ये जो सूरज है मुझे बहुत तंग करता है, कुछ करो इसका। रात में आराम करने नहीं बैठता तो सुबह सुबह आकर मेरी नींद खराब करता है, बहुत सताता है मुझे, उसे कुछ दंड दो, बहुत अत्याचार मुझ पर कर रहा है यह सूरज। तो भगवान ने सूरज को पुकारा और कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इसलिए संसार में भेजा था? तुम अंधकार को इतना परेशान क्यों करते हो? सूरज ने कहा, अंधकार ये कौन है? ये तो मुझे पता ही नहीं, यदि मैं उसे परेशान कर रहा हूं तो उसे मेरे सामने लाओ तो मैं उससे माफी मांगू। परंतु भगवान के कोर्ट में केस अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि सूर्य के सामने अंधकार आ नहीं सकता, और जहां ज्ञान सूर्य है वहां पर भी अंधकार आ नहीं सकता। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, तुम सब कौन हो? मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। सूर्य अंधकार को विनाश करता है, रोशनी लाता है और कीचड़े को भस्म करता है। तीन बातें कही है बाबा ने, तुम्हें भी संसार के अंधकार को नष्ट करना है, तुम्हें भी अपने ही मन के अंधकार को नष्ट करना है। विकार अंधकार है, विकारों से सीधा अपरोक्ष रूप से लड़ाया नहीं जा सकता, परोक्ष रूप से लड़ना होगा, अप्रगट रूप से ज्योति को जगाना होगा, आत्मज्ञान को लाना होगा। वो आत्मज्ञान की अवेयरनेस कितनी है, इस अंधेरे पथ का जो प्रकाश है, जो भगवान ने हमें दिया है, वह स्वमान है, हमारी अपनी पहचान। यह ज्ञान चालू होता है मैं कौन हूं से, 7 डे कोर्स एंड भी वही होता है, पर मैं कौन हूं। परंतु यहां थोड़ा अंतर है, मैं कौन सी आत्मा हूं। शुरुआत है मैं कौन हूं से और अंत है मैं कौन सी आत्मा। उत्तर है मैं आत्मा हूं, परंतु कौन सी आत्मा हूं। बहुत समान है, आत्मा की ज्योति जग जाना अर्थात समान में स्थित हो जाना। आज तक इतिहास में कितने बड़े बड़े फिलोसोफर्स हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए, मनीषी, योगी, तपस्वी, महात्मा, सब ने बहुत सारा ज्ञान सुनाया, परंतु किसी ने यह नहीं बताया समान क्या है। वो केवल और केवल भगवान अब आके बता रहा है। एक तरफ तो लड़ते रहना है अंधकार से, कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी मद, लड़ना है। एक तरफ तो लड़ाई का मार्ग है, दूसरी तरफ स्वस्थिति में स्थित हो जाना, समान में स्थित हो जाना। बाबा ने इसे सरल सहज राजयोग कहा है। परंतु सरल मार्ग की हमें आदत नहीं है, मार्ग बहुत सहज है। स्वमान की का अभ्यास, स्वमान अपने आप में एक साधना है, स्वमान की साधना, निरंतर स्वयं को, क्योंकि केवल मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जीवन भर नहीं किया जा सकता है, उसके साथ में कुछ जोड़ना होगा, मैं कौन सी आत्मा हूं। रोज ही रोज एक ही बात अगर बताई जाए कि भगवान पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, तो कुछ समय के बाद में उसका असर होना बंद हो जाता है। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हें स्वयं भगवान पढ़ाने आए हैं। ये जो बात है, ये जब सूक्ष्म हो जाए तो उसे समान कहा जाता है। नारे लगाने की बात नहीं है, किसी को बताने की बात नहीं है, ये स्वयं स्वयं चिंतन करने की बात है, उस स्वरूप में स्थित होने की बात है। चलते फिरते उठते बैठते खाते समान का अभ्यास, दो साधनाएं, एक समान की साधना और दूसरी है आत्मिक दृष्टि की साधना। जो भी दिख रहा है सभी आत्माएं हैं, ये भी एक साधना है। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है, जब भी तुम किसी को आत्मा देखते हो तो उसको तुम करंट देते हो, जब भी किसी को तुम आत्मा देखते हो तो उसे करंट देते हो। एक दूसरी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, जब जब तुम किसी को देह देखते हो तो समझना वो पाप हो रहा है, जब जब तुम किसी को देह देखते हो तो यह देह को देखना वासनाओं को जन्म देता है। 69 की एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है, यह देह जो है सांप है, सांप, तुम्हें इस सांप को नहीं मणि को देखना है। आत्मिक दृष्टि की साधना और समान की साधना, जैसे जैसे हम अपने स्वरूप में स्थित होते जाते हैं, क्योंकि यहां सब कुछ है, संपूर्ण ज्ञान यहां पर है। मल विक्षेप आवरण है, उसको हटाना है बस, कहीं से लाना नहीं है, वो है यहां। बाबा इस संसार में एक ही काम करने के लिए आए हैं, जगाने के लिए। वो आया है और उसने हमें स्मरण स्मृति दिलाई है कि तुम ये थे। ऐसा कोई भी धर्म शास्त्र नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी दिगंबर पैगंबर ईश्वर पुत्र अवतार जिसने ये कहा कि तुम देवता थे, किसी ने भी नहीं कहा आज तक। तुम देवता थे, बाबा ने जागरण कराया है। स्वयं स्वयं को जगाना, स्वयं स्वयं को जागृत करना। देह भान जो है वो निद्रा है और मूर्छा है, आत्माभिमान यह जागरण है, आत्मज्ञान यह प्रकाश है और देहभान यह अंधकार है। उस अंधकार के साथ सारे विकार जुड़े हुए हैं, क्योंकि वह स्मृति आत्मा की कम है इसलिए अभी भी संघर्ष है विकारों के साथ, क्रोध के साथ, लोभ के साथ, मोह के साथ, अहंकार के साथ। जापान की एक कहानी है जिसमें दिखाया है कि एक बार समुराय होते हैं वहां पे योद्धा। एक योद्धा शाम को जब युद्ध करके घर लौटा तो देखा उसके कमरे में उसकी जो खटिया है वहां एक चूहा बैठा हुआ है और उसे घूर रहा है। वो तो योद्धा था, उसने देखा कि ये चूहा मुझे घूर रहा है, इसकी इतनी हिम्मत, तो उसने अपनी तलवार निकाली और जोर से खटिया पर मारी तो तलवार के दो टुकड़े हो गए, चूहा दूसरी ओर चला गया। फिर उसने टूटी हुई तलवार से रात भर चूहे का पीछा किया घर में ही, पर उसे मार नहीं पाया। जितनी बार उसका पीछा करता और उस पर आक्रमण करता चूहा निकल जाता। और सुबह होते होते ये हालत हो गई तो उसे लगा कि ये कोई साधारण चूहा नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा योद्धा वाला चूहा, योद्धे जैसा चूहा है। परंतु जब तक वो बाहर निकलता है, ये बात सारे गांव में फैल जाती है कि एक चूहे ने इसे हरा दिया है, तो उसे बहुत चिंता होती है अब क्या किया जाए, मैं इतना बड़ा योद्धा और ये चूहा मुझे कैसे हरा सकता है। तो अपने मित्रों से सलाह लेता है, मित्र कहते हैं कि एक बिल्ली को लेके आओ। परंतु बिल्लियों के समाज में भी ये बात पहुंच जाती है कि एक चूहा है वो बहुत शक्तिशाली है, कौन सी बिल्ली जाएगी उसका सामना करने। तो एक बिल्ली तैयार होती है और वो जाती है, सारे लोग देखने के लिए उपस्थित। परंतु बिल्ली जैसे ही अंदर घुसती है वो चूहा जोर से आक्रमण करता है और बिल्ली घायल होकर गिर पड़ती है। तब तो ये बात दूर दूर तक फैल जाती है कि ये कोई साधारण चूहा नहीं है। वो योद्धा सोचता है अब क्या किया जाए, वो सोचते हैं राजसी बिल्ली को बुलाया जाए, राजा की जो बिल्ली होगी ना वो थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो राजा तक पहुंचता है और राजा को अपनी बात बताता है और कहता है कि ठीक है, राजा कहता है मैं अपनी बिल्ली दूंगा। तो राजा की बिल्ली जाती है, पर वो जब राजा की बिल्ली देखता है तो उसको दुख होता है क्योंकि इसके पहले वाली जो बिल्ली गई थी वो तो अधिक शक्तिशाली थी जो कि मर गई, और राजा वाली है इतनी शक्तिशाली दिखती नहीं है। तो फिर से सारा गांव इकट्ठा होता है और देखने के लिए कि अब क्या होगा। और राजा की जो बिल्ली है दरवाजा खोलती है, चूहा वहीं बैठा है घूरता हुआ। राजा की बिल्ली अंदर जाती है, चूहे को पकड़ती है और मार देती है। तो चारों ओर जय जयकार हो जाता है राजा की बिल्ली का, रथ यात्राएं निकाली जाती है। परंतु वो योद्धा पूछता है, आखिर तुमने ये किया कैसे? राजा की बिल्ली से कहता है, इस चूहे को तो मैं भी नहीं हरा पाया, और जो शक्तिशाली बिल्ली थी दूसरी वो भी नहीं हरा पाई, तुमने कैसे हरा दिया? वो बिल्ली एक उत्तर देती है। वो पूछता है उससे, कौन सी युक्ति से हराया? वो कहती है कि उसमें युक्ति की क्या बात है, मैं बिल्ली हूं और वो चूहा है, बस इतना काफी है, यही युक्ति है, मैं बिल्ली हूं, इसका संपूर्ण स्मरण और कोई दूसरी युक्ति ही नहीं है। पहले वाली जो बिल्लियां थी वो सब डरी हुई थी, अपने स्वरूप को भूली हुई थी, इसके लिए सब हार गई। युक्ति एक ही है, जो हूं जैसा हूं उसी स्वरूप में स्थित हो जाना, जो हूं जैसा हूं उस स्वरूप में स्थित हो जाना ही स्वमान है। स्वमान अहंकार नहीं, स्वमान अभिमान नहीं, एरोगेंस नहीं, स्वमान वास्तविक स्वरूप है और यही साधना है। जब आत्मा स्वमान में स्थित है तो सर्व शक्तियां उसमें स्वतः ही है। किसी से मांगने की, किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं, भक्ति करने की भी आवश्यकता नहीं। शिव बाबा की भक्ति कौन कौन करता है? माताओं में से हाथ खड़ा करो। शिव बाबा की भक्ति, शिव बाबा की भक्ति मतलब बाबा से मांगना, ये दे दो, वो दे दो, शक्ति दे दो, गुण दे दो, पैसे दे दो, धन दे दो, पति का ताला खोल दो, बुद्धि का, बच्चों को ज्ञान में ला लो, भक्ति, ये भी भक्ति मार्ग ही है। मांगना अर्थात भक्ति मार्ग। किसी भी तरह का कोई भी चीज, चाहे अलौकिक ही क्यों ना हो, कितनी ही, मांगना अर्थात भक्ति मार्ग। मांगो नहीं, दे दिया है। बाबा का क्या उत्तर है? मांगो नहीं, दे दिया है। परंतु शायद आत्मा अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं रिक्त है, इसलिए मांगती है। कुछ ना कुछ मांगती है, प्रेम मांगती है, केयर, अटेंशन, सम्मान चाहिए, भूख है आत्मा में, वस्तु चाहिए। मांग इसलिए रही है क्योंकि आंतरिक रिक्तता है। बहुत ज्ञान और योग और तपस्या से आत्मा ने स्वयं को नहीं भरा है, इसलिए उसे मांगना पड़ता है। और मांगना एक डिपेंडेंस है, एक अवलंबन है। अगर न मिले तो दुख होगा, फिर अगर इच्छाएं अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हुई तो दुख होगा, और यही कुचक्र है। मांगना, इच्छाओं का पूर्ण न होना और फिर दुख प्राप्त होना। स्वमान से स्वयं को भरना है। रोज की जो मुरली है उसमें से कुछ स्वमान निकालने हैं और उन पर काम करना है। कैसे काम करेंगे? जैसे आज सुबह की मुरली में बाबा ने सम्मान दिया है, कौन कौन से सम्मान थे आज याद है किसी को? शाम को हम चर्चा करेंगे आज की मुरली पर जो सुबह चली। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। सम्मान को सुना, उसे याद कर लिया, उसे लिख लिया, ये तो प्रारंभिक अवस्था है, इसका अभ्यास। और परिस्थितियों में अभ्यास। सबसे पहले तो स्वमान को स्वीकार करना है अंदर ही अंदर। हमारा अवचेतन मन स्वमान को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि उसमें हीनता के भाव भरे हुए हैं, अस्वीकार करता है। पहली स्टेप ही है स्वमान को, स्वयं को स्वीकार कराना कि ये मुझे कहा गया है। दूसरा उसको रिपीट करना मन ही मन कि ये समान है। और तीसरा योग में उसका अभ्यास करना। तो हम अभी इसी समान में स्थित होंगे, सभी एक मिनट के लिए फिर से अलर्ट होके बैठेंगे। एक दूसरा अच्छा अभ्यास है एक समान लेना और उसके ऊपर लिखना, एक समान लेना और उसके ऊपर मनन करना, चिंतन करना, एक समान लेना और उसका विस्तार करना, एक समान लेना और उसके ऊपर चर्चा करना। एक है मुरली सुनना, दूसरा है मुरली सुनाना, ये दो चीजें। तीसरा है मुरली पर चर्चा करना। ये जो तीसरी बात है ये मिसिंग है। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है मुरली पर चर्चा करना ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। मुरली पर चर्चा करना क्या है? ब्राह्मणों का कर्तव्य है। कौन कौन है जो यहां मुरली पर चर्चा करते हैं? डिस्कशन, वर्कशॉप, सेमिनार, संगोष्ठी, चर्चा, परिचर्चा। अगर नहीं करते, क्योंकि ये ज्ञान तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक हम इसकी चर्चा नहीं करते, इतना गुह्य ज्ञान है ये। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, गीता में लिखा है पवित्र को भी पवित्र करने वाला राज विद्या राजगुह्यम, ऐसा ये ज्ञान है। तो ये इतना केवल मुरली सुनने से नहीं होगा काम, रोज इसके ऊपर चर्चा करनी होगी। चर्चा के लिए दो लोगों की आवश्यकता है कम से कम। तो अपना ही एक ग्रुप बनाए और चर्चा करें। चर्चा कोई भी रूप धारण कर सकती है, जैसे प्रश्न क्या था, वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, महावाक्य क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से थे, नई बातें कौन सी थी आज की मुरली में, उस मुरली की चर्चा करना। और सभी को करना है ये, भाई माताएं बहनें सभी कुमार सबको, क्योंकि हम स्वयं का पालन पोषण जब तक मुरली से नहीं करते आत्मा में बल नहीं भरेगा। तो सभी फिर से अलर्ट होके बैठ जाएंगे, इसी समान का अभ्यास करेंगे। तपस्वियों में महातपस्वी मैं, एक ज्योतिर्मयी आत्मा हूं, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की संतान, मैं आत्मा, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, अपने स्वरूप में स्थित तेजस्वी हूँ। मेरा यह दिव्य प्रकाश संपूर्ण देह में फैल रहा है, मेरा एक एक अंग इस प्रकाश से आलोकित है। धीरे धीरे यह प्रकाश मेरे अंग अंग से चहुओर फैल रहा है। दूर दूर तक यह प्रकाश संसार के अंधकार का नाश कर रहा है। संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति स्वयं को मैं देख रहा हूं, यह ज्ञान का प्रकाश अज्ञान अंधकार का विनाश कर रहा है। संपूर्ण भूमंडल पर यह दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। स्वस्वरूप में स्थित मैं आत्मा निर्बोज और निर्भार स्थिति का अनुभव कर रही हूं। तो रोज की मुरली से हरेक को स्वमान निकालने हैं, रोज की मुरली से उस स्वमान का अभ्यास करना है और रोज की मुरली से उस स्वमान पर लिखना है, उसका विस्तार करना है और हो सके तो चर्चा भी। स्वमान में स्थित होने से बहुत सारे लाभ है और सबसे पहला लाभ और सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे ही हम शरीर के भान से ऊपर उठते हैं, जैसे ही शरीर के भान से ऊपर उठते हैं, शरीर के भान से किसी भी कारण से ऊपर उठा जाए तो महान कर्म का जन्म होता है। चाहे संसार में जो अधार्मिक लोग थे, जिनका धर्म और भगवान से कोई लेना देना नहीं था, प्रकृति के सानिध्य में गए और देहभान से थोड़ा ऊपर उड़ गए, महान चित्रों को, कविताओं को, साहित्य को जन्म दिया देहभान से ऊपर उठते ही। संसार में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, वो अपने रिसर्च में इतना खो जाते हैं, संशोधन में, महान आविष्कार को जन्म देते हैं, इस संसार में जिस जिसने भी देह से ऊपर उठने का प्रयत्न किया, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो या संसार का क्षेत्र हो, दोनों में ही महान कार्य किए। अगर भगवान के आदेशानुसार, परमात्मा आज्ञानुसार हम देह से ऊपर उठते हैं तो कितनी शक्तियां उसमें भरेगी आत्मा में। जो भूत प्रेत आत्माएं होती है बहुत शक्तिशाली होती है। एक कारण यह भी है कि उनका देह नहीं होता। जैसे ही आत्मा शरीर से डिटैच होती है उसमें पावर भरना चालू हो जाती है तुरंत। परंतु क्योंकि लंबे समय से इस देह में रहे हैं तो देह के प्रति आसक्ति है। भक्ति मार्ग में उदाहरण देते हैं नारियल का, जो गीला नारियल होता है वो, और एक है सूखा नारियल। गीला नारियल देहभान की अवस्था है जिसमें नारियल और उसका वो क्या कहेंगे उसको, कवच शेल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो इतना जुड़ा हुआ होता है दोनों भी, वो देहभान की अवस्था है। और जो सूखा नारियल है वो योगी की अवस्था है। ऐसे ऐसे हिलाओ तो अंदर का नारियल भी हिलता है, वो अलग और वो अलग। आत्मा इस देह में रहे परंतु ऐसा अनुभव हो कि देह अलग और मैं अलग। ब्रह्मा बाबा के जीवन में अंतिम समय कुछ मुरलियां चली है 68-69 में, जिसमें बीच बीच में बाबा कहते थे बाप इस तन में ऐसे रहते हैं जैसे यहां है ही नहीं। सबको लगा ये शिव बाबा कह रहा है, बाप इस तन में ऐसे रहते हैं जैसे यहां है ही नहीं। परंतु वो शिव बाबा नहीं, वो ब्रह्मा बाबा के अनुभव कह रहे थे। लंबे समय के पुरुषार्थ से इस देह को जीता था, देह में रहते हुए भी अशरीरी, देह में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति। इतना अभ्यास और इतनी प्रैक्टिस, वो देह का भान, वो स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान, उससे ऊपर महात्मा बुद्ध के जीवन में एक बात बताई है कि वो कहीं तपस्या कर रहे थे तो कुछ पुरुष किसी स्त्री का पीछा कर रहे थे और वो स्त्री उनके सामने से गुजर जाती है। वो पुरुष आते हैं और पूछते हैं उनसे, क्या आपने किसी को यहां से गुजरते देखा है, किसी स्त्री को? वो कहते हैं यहां से कोई गया तो जरूर है, पर वो स्त्री है या पुरुष है ये मुझे पता नहीं, कोई तो गया है यहां से, परंतु ये स्त्री है और ये पुरुष है ये भान अब मुझ में नहीं रहा है। इस भान से भी परे, क्योंकि आत्मा निर्लिंग है, अलिंग है, भिन्न भिन्न देह में जाकर इस देह में आई है, किसी जन्म में स्त्री किसी जन्म में पुरुष। यह भी एक अभ्यास है स्वयं को देखना अलग अलग देहों में। पीछे एक चक्र है ऊपर से नीचे तक, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। एक दूसरा चक्र है कि मैं आत्मा इस तन से पहले किसी और देह में थी, उससे पहले किसी और देह में थी, उससे पहले किसी और देह में थी। ये सूक्ष्म अभ्यास इस संसार में जितने भी विकार है आज के युग में वो सब इस देहभान से जन्म है। हवाओं में ही काम विकार है, जहां देखो बस काम ही काम, हर मन में काम विकार ऐसा बसा हुआ है कि उसके अतिरिक्त तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सारा मीडिया, सारे टीवी, सब कुछ क्यों? देहभान इतना सघन, इतना प्रगाढ़ हो गया है, उसकी इंटेंसिटी इतनी अधिक हो गई है। पिछले संडे मुरली थी, संकल्पों की जो गति है उसको क्या करो, धैर्यवत करो, कम करो, और सबसे तीव्र वेग, सबसे फास्ट स्पीड इस काम विकार की है, उसके सामने कुछ भी नहीं टिकता। व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ऐसे वातावरण में पवित्रता की साधना करना, तपस्या की साधना करना कितना महान कार्य है। समान की साधना करना जहां की विकार ही विकार है सब जगह, और यही एकमात्र साधना है। संसार में लोगों ने काम विकार से मुक्त होने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। विदेश में एक सन्यासियों का वर्ग है जिन्हें फ्लैजिस्ट कहा जाता है। वो एक चाबुक रखते हैं अपने पास, जैसे ही विकार का संकल्प उत्पन्न हुआ खुद को मारते हैं, परंतु ये करते करते कुछ समय के बाद कुछ और हो गया। वो जितना खुद को मारते थे और जितना लहूलुहान होते थे उतना ही वो काम वासना और जागने लगी धीरे धीरे। किया था किस लिए और हो क्या रहा था? क्योंकि मार्ग वो नहीं है, वो अंधकार से लड़ना है। कोई सोचते हैं इन विकारों पर रिसर्च किया जाए, इन विकारों को जीतने के लिए उनको बहुत गहराई से समझा जाए, जितना गहराई में जाता है उतना ही फंसता है। ये सोचने के लिए भी कि इससे मुक्त होना है फिर भी फंसता है। एडिक्ट्स, इंटरनेट एडिक्ट, ये नया एडिक्शन है कुछ सालों से जो चल रहा है। जीवन बर्बाद हो रहे हैं लोगों के। तो ऐसे विकारी वातावरण में यदि प्रकाश की एक किरण है तो वो समान है। केवल ये रिपीट करते रहना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, कितना देर करेंगे? मैं कौन सी आत्मा हूं? और हर दिन समान में वैरायटी चाहिए, अलग अलग अभ्यास, एक ही समान भी नहीं, हर दिन नए नए समान, हर दिन नई नई ज्ञान की पॉइंट्स। चार बातें बाबा मुरलियों में बताते हैं। एक है शब्दार्थ, शब्द क्या है उसका अर्थ क्या है। दूसरा है भावार्थ, जो पूरा वाक्य है उसका भाव क्या है। तीसरा है वाक्यार्थ, और चौथा गुणार्थ, गुण रहस्य क्या है उस वाक्य के पीछे। बाबा के साधारण से दिखने वाले उन महावाक्यों में बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ी साइकोलॉजी, डीप मनोविज्ञान की बातें छिपी हुई है। 71, 69 से लेके तो 80s तक जो भी मुरलियां है, व्यक्तवाणी, बहुत डीप साइकोलॉजी है। ह्यूमन माइंड किस तरह काम करता है उसके बारे में। तो सभी फिर से उसी समान में स्थित हो जाएंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं और मुझसे किरणें फैल रही हैं। तो सभी को ये समान की साधना करनी है। इसको साधना के रूप में लेना है। बाबा 23 तारीख को आ रहे हैं गुरुवार के दिन। तब तक हमें रोज स्वयं के माइंड को, स्वयं के मन को बिजी रखना है इसी समान के चिंतन में। तो अभी हम फिर से 3-4 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एक विषय पर चर्चा और करें।